ओम शांति। अभी हम सबके सामने हैं जगबीर भाई जी, जो हमारे ये जो स्पोर्ट्स विंग है इसके नेशनल ये हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। जगबीर भाई जी का हम स्वागत करते हैं, वो हम सबको अभी लाभान्वित करेंगे अपने माइंड पावर सेशन के द्वारा। तो सभी ध्यान से सुनिएगा। और जगबीर भाई जी ने जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में पीएचडी किया हुआ है और पहले हमारे जो है नेवी में भी काम किया है, बॉक्सिंग में भी चैंपियन रहे हैं जगबीर भाई जी। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं इनके अंदर और अभी जिन हम इनके द्वारा अपने माइंड को पावरफुल बनाएंगे। तो एक बारी फिर से जगबीर भाई जी का करतल ध्वनि से सभी स्वागत करें।
ओम शांति, गुड मॉर्निंग। अभी हम एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे और अपने मन को पूरा एकाग्र करेंगे बाह्य दुनिया से अंतर जगत की ओर और इस सेशन को बड़े ध्यान से सुनेंगे। बीच में मैं आपको कुछ टाइम भी दूंगा, लास्ट में कोई क्वेश्चन हो आपके तो अपने माइंड को टोटली फोकस करेंगे। जैसे कि बहन जी ने बताया, कुछ जो गेस्ट पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं।
सर्वशक्तिमान की संतान हो,
सर्वशक्तिमान की संतान हो।
कौन कहता है
हमारे मन में अनंत शक्तियां होती हैं। अगर हमें उनकी जानकारी मिल जाए, उनसे परिचय हो जाए, तो हम अपने जीवन में जो अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए उससे बहुत ज्यादा सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा इतिहास में कई लोगों ने ऐसे कारनामे किए जो अनेक सेंचुरीज तक कोई भी नहीं कर पाया था। अभी 24 अप्रैल को एक नाविक था जापान का, आपने शायद न्यूज सुनी होगी, ही वॉज ब्लाइंड। उसने 14,000 किलोमीटर की प्रशांत सागर को क्रॉस करके एक रिकॉर्ड बनाया। हालांकि एक नेविगेटर था जो उसको गाइड कर रहा था, लेकिन ऐसे ही रॉजर बेनिस्टर थे, दुनिया में उनका बहुत नाम हुआ जब एक मील की दूरी 4 मिनट से कम में तय करके उन्होंने दिखाई। उससे पहले अनेक एथलीट्स ने ऐसा ट्राई किया कि एक मील की दूरी 4 मिनट से कम में तय करने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं हुई और उन्होंने करके दिखाई तो उसके बाद आज तक 20,000 एथलीट्स उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर चुके। तो जब ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ना हुआ और यहां का जब कोर्स किया तो तब पता चला कि हमारे अंदर जो सोल की पावर है उसके अंदर माइंड पावर, इंटेलेक्चुअल पावर और संस्कार, ये इनको हम राजयोग मेडिटेशन से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। पावर तो है लेकिन वो मर्ज स्थिति में, उनको हमें एक्टिवेट करना है। तो उसके ऊपर मैंने सेशन तैयार किया है कि कैसे कुछ टूल्स जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने गेम्स के दौरान, और जितना हम अपने माइंड को फोकस करेंगे, पीसफुल माइंड से रहेंगे, ध्यान लगाएंगे और अपने आप सेल्फ टॉक करके अपने गेम को पहले से ही विजुलाइज करेंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देगा और जो सफलता में आप इतनी मेहनत कर रहे थे उसमें वो कम मेहनत में ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। तो ऐसे ही रहना हुआ था, पहले एयरफोर्स में थे कुछ साल, वहां बॉक्सिंग गेम इस राजयोग से पहले नॉर्मली जैसे फिजिकल ट्रेनिंग होती है करते थे, लेकिन जब संस्था से कनेक्ट होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे अपनी विशेषताओं का हमें ज्ञात हुआ कि हमारे अंदर और भी बहुत विशेषताएं हैं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक कमांड में साइकिलिंग टीम में कोई साइकिलिस्ट नहीं था, तो हमारे जो कमांडिंग अफसर थे उन्होंने बोला कि एक साइकिलिस्ट की जरूरत है, कि आपका अभी कोई मैच भी नहीं है, कैंप भी नहीं है, तो आप जा सकते हैं। तो 50 किलोमीटर की रेस थी, तो मैंने उसमें नाम लिखवाया और फर्स्ट टाइम साइकिलिंग की प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद जो चैंपियनशिप हुई तो उसमें मुझे पहली बार में सिल्वर मेडल मिला 50 किलोमीटर। तो मुझे लगा कि देखो, उन्हें तो पता ही नहीं था कि किसी ने कहा बॉक्सिंग खेल रहे हो, तो बॉक्सिंग स्टार्ट की। फिर एक चांस मिला साइकिलिंग, तो साइकिलिंग में सिल्वर मेडल मिल गया। फिर सर्विसेज की टीम में सिलेक्शन हुआ 100 किलोमीटर साइकिल रेस में, उसमें साइन में एक चैंपियनशिप हुई थी, तो वहां 9th पोजीशन आई 100 किलोमीटर रेस में। तो अपने को ये पता ही नहीं था कि हमारे अंदर ये टैलेंट है, साइकिलिंग में जाएं, बॉक्सिंग में जाएं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि शूटिंग टीम में मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए रमेश चौधरी, हमारे जो श्वेता चौधरी के कोच हैं, तो उनको निमंत्रण देने गया कि आप हमारी कॉन्फ्रेंस में आइए, माउंट आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो जैसे मैं इनविटेशन देने गया तो उन्होंने कहा कि अभी एक चैंपियनशिप है तो आप इसमें भाग लेना चाहेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एयरफोर्स छोड़े तो 7-8 साल हो गए, लेकिन अगर आप राइफल और पिस्टल अरेंज कर सकते हैं तो आई कैन ट्राई। तो मेरी ट्रेन थी 3 बजे, 1 बजे चैंपियनशिप थी और पार्टिसिपेट किया उसमें। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी, 80-90 शूटर आए हुए थे, स्टेट लेवल की चैंपियनशिप थी। तो पार्टिसिपेट करके ट्रेन पकड़ी और माउंट आबू वापस। तो सेकेंड डे एक फैक्स आया वहां से कि आपको राइफल शूटिंग में 10 मीटर राइफल शूटिंग में यू ऑन द फर्स्ट पोजिशन। तो तब से मुझे लगा कि, और मेरा सिर्फ टेक्निक यही थी कि हर शॉट पे, जैसे यहाँ आपको सुप्रीम पावर के बारे में बताया जाता है कि सुप्रीम पावर से कनेक्ट करके हर शॉट से पहले फ्यू सेकेंड्स, तो मैंने ऐसे 40 राउंड शॉट किए थे और ये सोच के कि चलो एक एक्सपीरियंस था एंड आई केम बैक। उसके बाद अभी मैराथन में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, कम से कम 30 हाफ मैराथन मैंने दौड़ी हैं। अभी 30 मार्च को पहली बार माउंट आबू में 50 किलोमीटर की एक मैराथन हुई, पोलो ग्राउंड से नीचे जाना था आबू रोड और फिर वापस आना था पहाड़ से। तो जब मैं नीचे गया तो कुछ प्लेयर्स कहने लगे कि मेरा दौड़ने का इरादा नहीं था, तो कहने लगे सर हम आपने हमें बुलाया और आप दौड़ नहीं रहे। तो फिर मैंने बिना एक दिन भी प्रैक्टिस किए नीचे से दौड़ना स्टार्ट किया, 27 किलोमीटर था वो, और जस्ट उनको हेल्प करने के लिए, वो बैग में पानी थे, कुछ पानी की बॉटल थी, तो उनको हेल्प भी किया जो रास्ते में जिनको जरूरत थी। तो कहने का भाव ये है कि विजुलाइजेशन के द्वारा आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो जब हमें ये साइंस पता चली कि हम अपना गुरु खुद ही बन सकते हैं, अपना गुरु का मतलब है कि हमारे अंदर वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सारी पावर्स हैं, बहुत बड़ा खजाना है, केवल हम उससे बात करने की टेक्निक सीख लें, उसकी इम्पोर्टेंस को हम जान लें। तो ये चीज मैंने ब्रूस ली के लाइफ से बहुत ज्यादा सीखी। बचपन में जब मोहम्मद अली का बहुत पढ़ते थे, अखबारों में बहुत सुनते थे, ब्रूस ली का भी, जिनका जन्म 1940 में हुआ, और 33 इयर्स की एज में इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। बहुत कुछ कारण थे, अभी तक पता नहीं चला कि कैसे उनकी ऐसे अनटाइमली डेथ हुई, लेकिन इनके कुछ कोट्स थे जो मुझे बहुत इंस्पायर करते थे जब भी हम पढ़ते थे। तो इन्होंने लिखा, ऑल नॉलेज अल्टीमेटली मीन्स सेल्फ नॉलेज। तो जब तक हम सेल्फ नॉलेज की ओर नहीं जाएंगे तो सब नॉलेज में सेल्फ नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये सेल्फ नॉलेज जो आत्मज्ञान है ये कहीं मिलता नहीं था। बहुत सारी बुक्स पढ़ी, स्वामी विवेकानंद की पढ़ी, महात्मा गांधी जी की बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन किसी ने प्रॉपर इसका डायरेक्शन नहीं दिया कि मतलब सेल्फ को कैसे डिफाइन करें। लेकिन जैसे ही बेंगलोर में एक कैंप में थे और एक सेंटर में जाना हुआ, तो वहां जाने के बाद एक दिन में ही उन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि यू आर ए सोल एंड यू आर सिटिंग इन योर फोरहेड, और हमारा जो सुप्रीम फादर है, सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम बैटरी है, उससे आपको कनेक्ट करना है सुप्रीम से। तो मैं तो बिना प्रैक्टिस किए पहले दिन ही मुझे आई फेल्ट आई एम गेटिंग सम करंट फ्रॉम द सुप्रीम, और इतना लाइट, इतना रिलैक्स। हालांकि प्रैक्टिस करके गए थे एक घंटे की, बॉक्सिंग में बहुत हार्ड ट्रेनिंग हुआ, हमारे एमडब्ल्यू यादव सर थे, दयानंद यादव, तो बहुत ट्रेनिंग कराते थे, रनिंग की, फिर जिम की, फिर पंचिंग बैग। तो काफी थकान के बाद वहां गए, लेकिन एक दो मिनट में ही ऐसा रिलैक्स हुआ कि जैसे प्रैक्टिस की ही नहीं। तो तब से मैंने इसके ऊपर ध्यान दिया, और कोइंसिडेंस था कि उसी टाइम ये नॉलेज भी मुझे क्लियर हुई। फिर इन्होंने ये बताया कि आप इजी लाइफ के लिए प्रे नहीं करो, आप स्ट्रेंथ के लिए प्रे करो कि आपके अंदर ताकत मिले, परमात्मा से शक्ति मिले, मेरे जीवन में कितना भी संघर्ष हो, कितने भी चैलेंजेस हो, लेकिन मैं उसके अंदर सफलता प्राप्त करता जाऊं। तो उसके बाद से मैंने कभी भी कंफर्ट जोन नहीं देखा। यहां पे भी कैंप है, कहीं भी चांस मिला, अभी भी कहीं सेवा का चांस मिलता है तो हम लोग तुरंत निकल जाते हैं, और जो भी खाने पीने रहने सहने का जो भी स्थान हो, लेकिन सेवा का चांस को प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसी ही इनकी एक बात थी अबाउट द माइंड। भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, रूल योर माइंड और इट विल रूल यू। तो माइंड के बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड कब कब एक्टिवेट रहता है, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करें, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, पुराने बिलीफ सिस्टम जो हमारे पेरेंट्स ने दिए, जो हमारी कल्चर ने दिए या मीडिया से हमें मिले, उनको रीप्रोग्रामिंग कैसे करें। तो ये जब ट्रेनिंग यहां सीखी तो उसके बाद बहुत कुछ जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिला। फिर इनकी एक और बात मुझे अच्छी लगती थी कि बी लाइक ए वॉटर। अगर हम कंफर्ट जोन में ही रहेंगे, हमारे प्लेयर्स कई बार जैसे ही कैंप में जाते हैं घर से दूर, तो घर का एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाहर जाकर के आपको बच्चों के साथ कलेक्टिवली रहना भी है, कैंप में खाने पीने में भी प्रॉब्लम, तो उसमें अगर आप एडजस्ट करने की ताकत नहीं है तो 50% प्लेयर्स वापस आ जाते हैं। ऐसा हमने फौज में भी देखा, सिलेक्शन तो हो जाता है लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो ट्रेनिंग में ही 25% 50% लोग वापस जाना स्टार्ट कर देते, जो वो देखते इतनी टफ ट्रेनिंग। अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें उस टाइम को तो हमारी लाइफ कैसे क्या बन जाती, मानते हो कि नहीं आप इस बात को? सो एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी भी लेवल पे चले जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको चैलेंजेस हर स्टेप में मिलेंगे। एज ए प्लेयर, एज ए कोच अलग चैलेंजेस होते हैं, एज ए ऑफिशियल आप डिफरेंट चैलेंजेस फेस करते हो, लेकिन उसमें हमें थोड़ा एडजस्ट करके एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी से हम लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात मैंने उनसे सीखी थी। और मेरे दूसरे प्रेरणा स्रोत थे स्टीव जॉब्स। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की ज्यादा एजुकेशन नहीं की, एक कॉलेज में उनकी मदर थी जो वो अंडर ग्रेजुएट थी, बैचलर थी When he was born, तो वो किसी को adopt करना चाहती थी कि भाई इनको कोई adopt कर ले तो इनकी life बन जाएगी। तो काफी कपल्स आए इनको एडॉप्ट करने के लिए, एक वकील था, उन्होंने इनको देखा तो इनको देख करके उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं हमें बच्चा एडॉप्ट नहीं करना, हमें कोई बच्ची चाहिए, उन्होंने बहाना करके इनको छोड़ दिया। फिर एक और पेरेंट्स आए तो इनके मदर की एक ही ख्वाहिश थी कि जो भी इनको एडॉप्ट करें वो ग्रेजुएट होने चाहिए, लेकिन जो पेरेंट्स आए थे वो ग्रेजुएट नहीं थे, लेकिन उनको ये दिल थी कि हम इस बच्चे को एडॉप्ट कर लें। तो काफी कोशिश करने के बाद वो इसकी मदर को उन्होंने कन्विंस कर लिया कि हम इसको ग्रेजुएट करेंगे और इसको बहुत आगे महान व्यक्ति बनाएंगे। लेकिन जैसे ही इनका एडमिशन किया कॉलेज में, तो कॉलेज में जाने के बाद बहुत महंगी वहां की पढ़ाई थी, तो उन्होंने देखा कि मेरे पेरेंट्स की सारी पढ़ाई में ही खर्चा जा रहा है, तो इन्होंने वो कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। ड्रॉप आउट के बाद एक कैलीग्राफी करके एक सब्जेक्ट था वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, पैसे थे नहीं तो जो और स्टूडेंट्स थे उनके साथ फर्स्ट पे ही सो जाते थे, तो कैलीग्राफी करने के बाद फिर धीरे धीरे एक वीडियो गेम्स की उसमें जॉब मिला। जॉब मिलने के बाद एक पार्टनर से इनका कनेक्शन हुआ, तो वहां इन्होंने प्लानिंग किया कि हम एक कंप्यूटर बनाते हैं, क्योंकि इनके फादर की वर्कशॉप थी इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, तो यहां इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया। तो कंप्यूटर बनाने के बाद वो इतना सेल हुआ पूरी दुनिया में, तो इनकी वो कंपनी एस्टेब्लिश हो गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब दूसरा कंप्यूटर बनाया तो कंपनी फिर घाटे में चली गई बहुत। तो इन्होंने जिस व्यक्ति को रखा था कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने एक बोर्ड वालों के साथ मीटिंग की, तो मीटिंग वालों ने कहा कि एक स्टीक जॉब की वजह से हमें इतना नुकसान हुआ है, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि इसको कंपनी से बर्खास्त कर दो। तो ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ओन कंपनी, जो कंपनी खुद बनाई थी इतनी मेहनत से, उस कंपनी से ही इनको 30 साल के एज में निकाल दिया गया। तो इनके जो एक्सपीरियंसेस मैंने सुने वो बड़े वंडरफुल थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस चीज को आप खुद बनाओ आप उसी चीज से आपको बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन इन्होंने उस बिटर ट्रुथ को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया और एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था नेक्स्ट, और 4-5 साल बनाने के बाद जब वो कंपनी सक्सेसफुल हो गई तो पुराने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इनको फिर से बुलाया 5 साल के बाद। 5 साल के बाद फिर ये अब उस कंपनी के डायरेक्टर बने, उनकी कंपनी को खरीदा गया और इन्होंने बहुत सारे iTunes, बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाले। लेकिन जब इनका एक प्रोडक्ट निकला एप्पल, उसके बाद ही वॉज हाईली सक्सेसफुल, पूरी दुनिया इनको जानने लगी। और इनका एक मूल मंत्र था कि ये रोज सोचते थे कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, मैं ऐसे आज के दिन को जीऊं। ये हो सकता है हमारे साथ? हम रोज सुबह उठ करके ये सोचें कि अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो आज तो मैं क्या क्या काम करूं। ये इनके सीक्रेट था इनकी सक्सेस का। दूसरा, ही वॉज नॉट फैन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। इनकी जो बिटिया थी उन्होंने अपनी इनकी ऑटोबायोग्राफी जब लिखी तो उसमें उसने मेंशन किया ये कभी भी लाइक नहीं करते थे कि मैं फॉर्मल एजुकेशन में ज्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करूं। ही यूज टू से कि ये जो दे टीच यू हाउ अदर पीपल थिंक ड्यूरिंग योर मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स। अब मैंने पहले प्री इंजीनियरिंग किया, फिर उसके बाद एफओ ज्वाइन किया तो वहां एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, फिर AMI स्टार्ट की, फिर बॉक्सिंग के कारण वो छोड़ी तो फिर BA स्टार्ट किया, फिर BA में पॉलिटिकल साइंस, फिर MA में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे मतलब कुछ चैनलाइज नहीं हुआ वो टाइम। तो अगर हम एक ही जगह फोकस करें और हम इनर पावर्स को एक्टिवेट करें, जैसे मान लो फिजिकल एजुकेशन अगर मेरा सब्जेक्ट होता तो आई वुड हैव डन डिफरेंट थिंग्स। तो हम फॉर्मल एजुकेशन जो इसमें बताया है कि उसके साथ साथ हम अपने लाइकिंग का कोई गेम, कोई एक्टिविटी, कोई जरूर अपने जीवन में अपनाएं। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर जब वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तो ही वॉज नॉट एबल टू फोकस हिज माइंड ऑन द स्टडीज. आपको पता है वो दसवीं में फेल हो गए थे. तो अगर पेरेंट्स उनको ज्यादा फोर्स करते एजुकेशन की तरफ तो आज जो उनका कैरियर है भारत रत्न बने, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने कमाए बिकॉज ऑफ द वन स्किल. और वो कौन सी स्किल्स थी? क्रिकेटिंग स्किल. एक स्किल को आप डेवलप कर लो एंड द होल वर्ल्ड विल बी बिहाइंड यू. चाहे वो ड्राइंग है, आर्टिस्ट है, सिंगिंग है, प्लेइंग है, कोई भी स्किल्स. और वो स्किल आपकी दिल पसंद की होनी चाहिए. अगर वो पेरेंट्स के द्वारा या किसी रिलेटिव्स के द्वारा आपके ऊपर थोपी गई है तो फिर आप बहुत ज्यादा या कोई हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकते. तो हम अपने बच्चों को उनकी लाइकिंग, उनकी क्या टेंडेंसी है, दे वॉन्ट टू हैव आर्ट्स, दे वॉन्ट टू हैव साइंस, दे वॉन्ट टू हैव फुटबॉल, दे वॉन्ट टू हैव हॉकी, तो हम उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ें. अभी एक रिसेंटली एक डॉक्टर थे तो उनका बेटा वो ही वॉन्टेड टू डू कंप्यूटर इंजीनियरिंग नोएडा में. तो मेरे से कहने लगा भाई मैं क्या करूं अभी, ये तो कहते हैं हॉस्पिटल बनाए हुए इनको कौन संभालेगा. तो मैंने कहा मेरे हिसाब से जो साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपको कंप्यूटर की फील्ड में जाना है तो देन यू शुड गो इन दैट फील्ड होम. तो उन्होंने कैसे भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया. नाउ ही इज रनिंग ए वेरी गुड कंपनी इन नोएडा बिकॉज उसके दिल पसंद का उसको जॉब मिला, उसको कोई थकान नहीं होती. तो जब भी हम अपने पसंद का गेम चुनते हैं तो हम ग्राउंड में पहले पहुंचते हैं, कोच बाद में आते हैं. लेकिन जब हम कोई ऊपर गेम थोपा जाता है तो कोच पहले आ जाते हैं और प्लेयर बाद में आते हैं. क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लिया हुआ है, सब कॉन्शियस से नहीं. तो ये चीजें मैंने एक चार्ट बना करके इसको थोड़ा सा ब्रीफ किया कि कैसे माइंड पावर के बारे में बताया जाए लोगों को. तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्पेस है पूरा, ये पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है. जैसे एक कॉर्पोरियल वर्ल्ड है जिसको फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं और दूसरा है मेटाफिजिकल. फिजिकल वर्ल्ड को हम फिजिकल आई से स्काई तक देख सकते हैं, है ना, ब्लू स्काई तक देख सकते हैं कि नहीं. उसके बाद भी दुनिया है या नहीं है? है, लेकिन साइंटिस्टों को नहीं पता. क्यों? क्योंकि वो मेटाफिजिकल. तो वो हमें यहां करके पता चला कि ये जो कॉर्पोरियल वर्ल्ड है इसके ऊपर इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड. यहां हमें एनर्जी मिलती है सन से, सनलाइट. वहां मिलती है ज्ञान सूर्य से. तो राजयोग के द्वारा हम सेल्फ के ऊपर फोकस करके वी कैन कनेक्ट विद द सुप्रीम. तो उससे क्या होता है कि हमारी सोल गेट्स एनर्जाइज और सोल से एनर्जी आती है माइंड में, माइंड से ब्रेन में, ब्रेन से बॉडी में और बॉडी में उसी हिसाब से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. ये चार्ट को अगर हमने समझ लिया तो पूरी माइंड पावर की ट्रेनिंग आपके समझ में आ जाएगी. तो बहुत ही सिंपल. इसके जो एनर्जी यहां से जो ट्रांसफर होती है तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी अंतर्मन. जब भी हम अंतर्मन की एनर्जीज को एक्टिवेट करते हैं, अंतर्मन से वार्तालाप करते हैं तो हमें बहुत अच्छे सॉल्यूशंस मिलते हैं. आपने नोट किया होगा जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप थोड़ा साइलेंस में बैठो और अपने आप से डायलॉग विद द सेल्फ, ऑटोमेटिकली आंसर मिलेगा. और वो परमात्मा ने सबका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा दिया है मैकेनिज्म, वो ये नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति मतलब ये अपने जीवन में फेल हो. हम जब भी फेल होते हैं हम अपने कॉन्शियस माइंड से जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कई बार सफलता दिला देता है, कई बार नहीं दिलाता. लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे आपको हमेशा सफलता मिलेगी. ये माइंड से फिर ब्रेन के अंदर अगर हम ईजी करें तो हमारा ब्रेन भी फ्लक्चुएट होता है चार फ्रिक्वेंसीज में, बीटा, अल्फा, डीटा, डेल्टा. बीटा में हम अवेक होते हैं, अल्फा में व्हेन वी आर इन मेडिटेशन या हम रिलैक्स हों, दूसरों के बारे में अच्छा सोच रहे हों, दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हों तो हम अल्फा लेवल में होते हैं क्योंकि उससे हमें दुआएं मिलती हैं. उसके बाद थीटा, थीटा में हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाती और जब डेल्टा होती है तो उसमें गहरी नींद होती है. जैसे किसी बच्चे को आपने एक खटिया से लेके दूसरे खटिया पे या दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया और उस बच्चे को पता नहीं चला, तो ही इज इन डेल्टा वेव। तो डेल्टा वेव बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से जब भी हम सो के उठते हैं तो अल्फा लेवल में 5 to 10 मिनट रहते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे काम करना शुरू ना करें तो। आजकल मेजोरिटी क्या है घरों में, 50 to 75% उठते ही क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए, न्यूज चैनल चाहिए या न्यूज़पेपर चाहिए। तो आई विल रिकमेंड यू कि न्यूज़पेपर ब्रेकफास्ट के बाद अप्रोक्सीमेटली 9 o'clock के बाद अगर आप देखेंगे तो इट विल नॉट अफेक्ट योर सबकॉन्शियस माइंड। अदरवाइज 5 to 10 मिनट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है उस टाइम ये सारी बातें अंदर जाती हैं। एंड देर इज ए सेइंग नो न्यूज इज गुड न्यूज। जब 75 to 90% नेगेटिव न्यूज है अगर हम उसको सुबह सुबह पढ़ रहे हैं तो इट विल अफेक्ट योर लाइफ। फिर ब्रेन से बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं, उसमें एंडोर्फिन या कॉर्टिसोल। अगर हम अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, प्योर थॉट्स क्रिएट करते हैं तो हमारे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होती है, उसको एंडोर्फिन कहते हैं। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली जजमेंटल हैं दूसरों के बारे में, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसे नहीं करता, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता और वो नेगेटिव एनर्जी को जनरेट करते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है लाइफ में और धीरे धीरे लोग स्ट्रेस में, टेंशन में, डिप्रेशन में भी चले जाते। अगर बहुत ज्यादा इसका चिंतन करें तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। और REDरेस्ट, एक्सरसाइज एंड डाइट, इनके ऊपर बैलेंस रखना बहुत जरूरी है अगर हम होलिस्टिकली फिट रहना चाहते हैं तो। तो ये एक चार्ट मैंने बनाया ताकि कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से समझ ले कि हाउ आवर माइंड इज फंक्शनिंग। इसका थोड़ा मैं डिटेल अलग स्लाइड्स बनाई है जो आपको भी बताऊंगा। इससे पहले बताना चाहूंगा कि हमारी दादी जानकी जी के ऊपर 1978 में एक अमेरिका में एक टेस्ट हुआ था। तो हेड के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं और वो माइंड की रीडिंग करते हैं, मतलब ब्रेन की। तो ऐसा पाया गया कि जब वो बैठ करके योग कर रहे थे तो उनकी जो रीडिंग थी वो डेल्टा वेव तक आ रही थी यहां तक, जबकि म्यूजिक भी सुना रहे थे। उनको वो साइंटिस्ट बोल रहे थे कि आप रिवर्स काउंटिंग करो 99, 98, 97, तो सब एक्टिविटीज करते हुए भी शी वॉज एबल टू गो अप टू डेल्टा लेवल, जो कि आज तक साइंटिस्टों ने कभी भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया था। तो दैट टाइम शी वॉज डिक्लेयर्ड एज डेल्टा वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। आज वो 103 साल की है और देखो कितने अच्छे रूप से हमारा संचालन कर रही है। तो ये सारी चीजें हमें जब इसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो जानकारी मिलनी स्टार्ट हुई। फिर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारी बातें हैं, हम केवल इतना जान लें कि हमारी रिकॉर्डिंग मशीन है, जो भी हम अपने आप से बातें करते हैं ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती रहती है। तो हमें पॉजिटिव बातें करनी है या नेगेटिव? नेगेटिव, पॉजिटिव। और अगर कोई नेगेटिविटी क्रिएट करे जानबूझ के तो क्या करना चाहिए? उसमें हमें राजयोग का प्रयोग करना चाहिए। हमारे यहां बताया जाता है सोल कॉन्शियस विजन। जब भी हम किसी व्यक्ति को देखें तो आत्मिक दृष्टि से देखें, आत्मा भाई भाई है, ये विजन क्रिएट करने से हमारी नेगेटिविटी बहुत मिनिमाइज हो जाती है, एकदम खत्म नहीं होती, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। तो हम ध्यान रखें कि सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है वर्ड, ये इमेज। कॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है वर्ड्स। तो जब भी हम कोई गेम के अंदर जाएं उसको पार्टिसिपेट करने से पहले विजुलाइज करें। विजुलाइज करने से हमारे सबकॉन्शियस एनर्जी वहां तक पहुंचती है और वो हमें एक्स्ट्रा मदद देती है। तो इसमें लिखा है लाइक अट्रैक्ट वट एवर द कॉन्शियस माइंड थिंक्स एंड बिलीव्स, द सबकॉन्शियस माइंड आइडेंटिकली क्रिएट्स। हर जन्म में हमें कॉन्शियस माइंड नया मिलता है, सबकॉन्शियस के अंदर पिछले जन्मों की कैरी फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन चलती रहती। फिर Every emotion you ever experienced is stored in your subconscious mind. वो कहते कई हजार गुना ज्यादा हमारे powers हैं subconscious के अंदर. हमने अपने गांव में एक बार देखा था, जब छुट्टियों में जाते थे तो गेहूं की जब कटाई होती थी तो गेहूं की ट्रॉली एक भरी हुई थी, तो वो वहां पे खड़ी हुई थी और हम लोग ऐसे साइड में अपना काम कर रहे थे. तो एक छोटा सा बच्चा था, वो ट्रॉली के नीचे चला गया था और उसकी माँ वहां गेहूं के उसमें ढेर में काम कर रही थी. तो जैसे ही वो वहां गया तो उसके अंदर जो ट्रॉली में सपोर्ट था उसके नीचे ईंट लगी हुई थी, उसने उसको ऐसे डिस्टर्ब कर दिया तो वो ट्रॉली उस बच्चे के ऊपर आने लगी. उसकी मदर ने देखा और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में शी वेंट और पूरी ट्रॉली को उसने कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रख लिया एंड शी कुड सेव हर चाइल्ड. और उसके बाद जैसे ही उसने उसको बचाया तो फिर ट्रॉली को दोबारा ऊपर करने लगे. तो उस माताजी को बुलाया कि माताजी इसको फिर करना ऊपर, तो उसको चक से मस नहीं कर पाए. अभी पिछली बार अंशु जैन सप्पा जो कि 3 बार एवरेस्ट चढ़ चुकी है और मेडिटेशन भी करती है, मुरली भी सुनती है, अभी एक पहाड़ से वो नीचे आ रहे थे तो उसी टाइम उनकी जो गार है वो साइड में एकदम नीचे की तरफ जाने लगी. तो पीछे जो व्यक्ति बैठा था वो उसने दरवाजा खोल के और एक बड़ा सा पत्थर लेके और उस कार के पीछे वाले पहिए के लगा दिया, तो कार नीचे जाने से रुक गई. तो इतने में आसपास जो ट्रक आ रहे जा रहे थे वो रुकना स्टार्ट हो गए. तो उन्होंने कहा कि चलो इस कार को पीछे खींचते हैं. लकीली देवर से बहुत 13,000 की हाइट पे ऐसा हुआ था. तो जब वो उन्होंने कहा कि जिसने रखा है ना पत्थर उसी को बोले पत्थर को हटा दे. अब बिलीव नहीं करोगे, जिस व्यक्ति ने वो इतना जल्दी रख दिया पत्थर उठा के तो वो उस पत्थर को हटा नहीं पाया, क्योंकि दैट टाइम इमरजेंसी पावर, वो कौन सी पावर थी? सबकॉन्शियस माइंड की पावर थी. और जब वो रिलैक्स हो गए तो कॉन्शियस माइंड ने टेक ओवर कर लिया. इट वॉज नॉट हैविंग दैट मच पावर. हम साइकिल सीखते हैं स्टार्टिंग में, कितनी बार गिरते हैं क्योंकि कॉन्शियस माइंड से सीख रहे हैं. आप जैसे साइकिल सीख लेते हो फिर आपको हैंडल पकड़ने की भी जरूरत नहीं है और आराम से चला लेते बिना हैंडल पकड़े. तो बिकॉज द सबकॉन्शियस माइंड हैज टेकन ओवर बाय द रिपीटेशन. तो ये चीज हम ध्यान रखें. ब्रेन की भी बहुत सारी पावर्स है जो हम लोग डिटेल में इसका बताते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज होती हैं. हमारे दो बॉडी भी होती हैं, फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी. एथरिक बॉडी कहते हैं, सटल बॉडी कहते हैं, उसको ऑरा भी कहते हैं. जो भी हम यहाँ संकल्प करते हैं उससे हमारा एक ऑरा बन जाता है, बायोमैग्नेटिक फील्ड. तो जब भी हम लो एनर्जी के व्यक्ति के नजदीक जाते हैं तो वो एनर्जी उसको गेन होना स्टार्ट हो जाती है. तो जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं उनका ऑरा ज्यादा ब्राइट पाया जाता है. जब हमारी अच्छी सोच होती है, सात्विक भोजन होता है, मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो ऑरा है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. तो ये भी एक हमें हेल्प करता है टू बी सक्सेसफुल इन अवर लाइफ. फिर ये कुछ टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं अपनी ट्रेनिंग में. 3 दिन की ट्रेनिंग, वो 3 दिन में 9 लेक्चर होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, फिर गाइडेड मेडिटेशन होता है रोज, मतलब मॉर्निंग इवनिंग उनको विजुलाइजेशन कराते हैं. तो ये टूल्स उनके अंदर हम यूज करते हैं, मेडिटेशन, विजुलाइजेशन, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, सेल्फ टॉक, साइलेंस एंड डेली रूटीन. अगर हमारा डेली रूटीन ठीक नहीं है और हम कहें जी मेडिटेशन में ताकत नहीं आ रही, आप रात को सोए 1:30-2 बजे, रेस्ट भी प्रॉपर नहीं किया, डाइट भी प्रॉपर नहीं खाई और सुबह ध्यान में बैठ रहे हो, तो योग लगेगा आपका ना? तो उसका इफेक्ट आ जाता है. तो हम रेस्ट, एक्सरसाइज और डाइट का प्रॉपर कॉम्बिनेशन रखें. एक बार हमारी हॉकी की टीम इसलिए ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाई कि उनका सुबह बहुत क्रूशियल मैच था और जैसे ही वो मैच के बारे में सोचते सोचते टीम को नींद ही नहीं आई रात को 2 बजे तक. तो जब صبح میچ ہوا تو وہ میچ ہار گئے. واپس انڈیا ٹیم آئی اور ان کے کیپٹن نے میڈیا کو بتایا کہ ون آف دا ریزن واز وی ڈیڈ ناٹ ہیو دا پراپر ریسٹ ان دا نائٹ. تو افیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ریسٹ کا ہمارے پرفارمنس میں؟ بہت افیکٹ ہوتا ہے. تو اس کا بھی ہم دھیان رکھیں. میڈیٹیشن کا تھوڑا میں نے اس میں بتایا ہے کہ کیسے ہم سیلف کو ہائر سیلف سے کنیکٹ کرتے ہیں. آپ کو صبح بھی سیشن کرایا تھا, اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ مائنڈ کے بارے میں, سول مائنڈ, اس کے بعد سپریم سول کے بارے میں. جب یہ پوری پکچر کلیئر ہو جائے گی تو یو کین کنیکٹ یور سیلف ود دا تھاٹس بہت ایزیلی. تو اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے ہم لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو سیلف کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے. تو ابھی آپ فور فنگر اور تھم کو کنیکٹ کر کے ایک دم الرٹ ہو کے بیٹھیں گے تو میں 30 سیکنڈز کے لیے آپ کو کوشش کروں گا سپریم سول سے کنیکٹ کرانے کے لیے. اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ دا انرجی فرام دا سپریم, دونوں پیروں کو کراس نہیں رکھیں گے, بالکل ٹچنگ آن دا گراؤنڈ, ایک دم ریلیکس ہو کے بیٹھیں گے, ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کریں گے. آئی جسٹ گیو یو ون کامنٹری اینڈ ٹرائی ٹو فوکس یور مائنڈ. انیشیلی یو کین کلوز یور آئیز, بالکل سائلنس میں رہیں گے. کنیکٹ یور فور فنگر اینڈ تھم, جان مدرا. Now focus your mind on the self. پورا دھیان اپنے اوپر ایکاگر کریں گے. Now imagine that my physical body is made up of white light. پورا فرشتے جیسا روپ ایمرج کریں گے. Now see a diamond like star in your forehead. برکوٹی کے مدھے ایک چمکتا ہوا دیویہ ستارہ ایمرج کریں گے. دھیرے دھیرے یہ ڈیوائن اسٹار یہاں سے نکل کے اوپر کی اور جا رہا ہے, ایسا ویژلائز کریں. کراس دا روف of this hall, اوپر جاتے جائیں like a star going into the sky, پورا نیلے امبر کو بھی کراس کرتے جائیں. enter into the golden red light, تیسرے نیتر سے ویژلائز کرتے جائیں کہ میں گہرے لال رنگ کی دنیا میں ناؤ ویژلائز اے سپریم اسٹار ان دا سول ورلڈ, پرم دھام میں پرم شکتی کے نیچے جا کر کے بیٹھیں گے. فیل دا پاورز فرام دا سپریم, پرماتما کی شکتی میرے اندر آتی جا رہی ہے. آئی ایم فیلنگ ویری لائٹ, ویری ریلیکس. میں بہت بھاگیہ شالی ہوں جو میں پرماتما سے کنیکشن کرنے کی ودھی پتا چلی. دھیرے دھیرے واپس آئیں گے. Come back to the earth planet, پورا گلیکسی کو کراس کرتے ہوئے. Come to your physical body, open your eyes, rub your palm, put it on your eyes. ऐसे हम लोग घड़ी घड़ी इसकी प्रैक्टिस करें, इनिशियली सुबह शाम कर सकते हैं, उसके बाद चार पांच बार करें, फिर हर घंटे करते रहें, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे माइंड फोकस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के बारे में ब्रूस ली जी ने कहा था, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ए पर्सन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स, बट आई एम डेफिनेटली अफ्रेड ऑफ दैट मैन हु हैज प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम्स। ये एक संकल्प, सोल कॉन्शियस और सुप्रीम गॉड कॉन्शियस। तो इसमें जब ड्रिल हम करते जाएंगे तो हमारे अंदर वो महारत आनी स्टार्ट हो जाएगी और हमें डीप एक्सपीरियंसेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये विजुलाइजेशन के बारे में कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसको काम को करने से पहले हम मेंटल लेवल पे कर लें रिहर्सल। हम यहां से दिल्ली जा रहे हैं तो माइंड में पूरा पिक्चर विजुलाइज कर लें, यू आर गोइंग टू द ट्रेन, बोर्डिंग द ट्रेन एंड बहुत कंफर्टेबली सेफली यू हैव रीच टू योर डेस्टिनेशन। बाई फ्लाइट जा रहे हैं उसको विजुलाइज कर सकते हैं, कोई मैच खेलने जा रहे हैं, कोई बच्चा एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है, तो उस सब में ये विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू विजुलाइज देन यू मेटलाइज, इफ यू हैव बीन देयर इन द माइंड यू शैल गो देयर इन द बॉडी। इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने से कहा था। तो ये विजुलाइजेशन की प्रैक्टिस भी हम आपको बीच बीच में कराते रहेंगे। और ये कुछ अफर्मेशंस हैं, मान लो आपका मेडिटेशन भी नहीं हो रहा, विजुलाइजेशन भी नहीं कर पा रहे, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द अफर्मेशंस। अपने बारे में पॉजिटिव सोचना, कोई लोग कुछ भी क्रिटिसाइज करें आपके बारे में, कुछ भी बोलते रहें, लेकिन उनको सुना अनसुना करके अपनी अफर्मेशंस के ऊपर माइंड को फोकस करना। आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम हेल्दी, आई एम वंडरफुल। अपने बारे में जैसे ही हम अफर्मेशंस को यूज करेंगे तो आपकी एनर्जी एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक टूल है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड इज द विटामिन ऑफ द सोल। अगर हम सुबह उठ करके हमारा योग नहीं लग रहा है परमात्मा के लिए, अगर हम ग्रेटफुल भी हो जाएं कि थैंक गॉड आपने मेरे को सब कुछ, हाथ पैर आंख नाक सब ऑर्गन्स इतने अच्छे दिए हैं, मैं बहुत महान कार्य करूंगा, उसकी महिमा करना स्टार्ट करें, तो उससे भी हमारा एनर्जी लेवल हाई होना स्टार्ट हो जाए। वी कैन बी ग्रेटफुल टू गॉड एंड सेकेंड नंबर किसका आता है, पेरेंट्स, कोचेस, सेल्फ। सेल्फ के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए कि नहीं, इतना अच्छे हमारे ऑर्गन्स हैं, सब इतना अच्छा हेल्थ हमें मिला है, तो इसके लिए भी जैसे ही आप ग्रेटफुल होंगे तो धीरे धीरे एनर्जी उनकी स्टार्ट हो जाएगी। आपको हार्ट के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए, बचपन से लेकर अब तक नॉन कंटिन्यूअस विदाउट एनी इंटरप्शन विदाउट एनी रेस्ट आपके लिए काम कर रहा है, तो उसके लिए भी कुछ ऐसे थॉट्स हम भेज देंगे तो उसको भी काफी हीलिंग होगी और उसकी भी हेल्थ बनी रहेगी। तो ये किसी भी ऑर्गन्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन। देन सेल्फ टॉक, जो भी हम अपने आप से बात कर रहे हैं, जैसे मैं अभी एक सेशन ले रहा हूं तो काफी लोगों का सेल्फ टॉक स्टार्ट होगा, है ना, हम अपने आप से बातें करते रहते हैं, तो उस सेल्फ टॉक के द्वारा भी हम कैसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, केवल फ्री टाइम में थोड़ा सा अपने आप से बैठ करके बात करें। और बेस्ट टाइम कौन सा है सेल्फ टॉक के लिए, अमृत वेला, उसके बाद शाम को सोने से पहले और जब भी हम सो के उठते हैं, तो जब हमारा ब्रेन अल्फा लेवल में रहेगा तो वो 5 मिनट यू कैन विजुलाइज, यू कैन हैव ए सेल्फ टॉक, यू कैन सेल्फ प्रोग्राम योर सेल्फ, सो दैट इज द बेस्ट टाइम। फिर है साइलेंस। मान लो इनमें से कोई भी चीज आप नहीं कर पा रहे हैं कि आपका योग भी नहीं लग रहा, यू कैन नॉट विजुलाइज कि आई एम ए सोल, फिर धीरे धीरे संकल्पों को ऊपर ले जाना भी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो वी कैन मेंटेन साइलेंस। साइलेंस डिफिकल्ट है क्या, डिफिकल्ट है? लेकिन उसका अभ्यास करना है, ना बीच बीच में टाइम निकाल के जस्ट मेंटेन। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, तो एक टाइम निकाल लो, एक दो मिनट, जस्ट लुक एट द नेचर, रिलैक्स और एकदम साइलेंस में। तो ऐसा साइलेंस करने से हमारा एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है, वी डोंट गेट एग्जॉस्टेड। हम एक ही बार में बहुत सारा काम करें तो उसमें बहुत सारे हमारे मतलब डैमेजेस हो जाते हैं इंटरनली बॉडी के अंदर। तो बीच बीच में हम ऐसे साइलेंस का भी प्रैक्टिस करें। फिर है डेली रूटीन। डेली रूटीन में हमें सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेडिटेशन करना चाहिए, उसके बाद वी शुड टेक वाटर, ल्यूक वॉर्म वाटर, और फिर थोड़ा एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज के बाद थोड़ा अध्ययन करें, कोई भी सेल्फ स्टडी। तो मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है, आधा पौना घंटा वॉक, आधा पौना घंटा सेल्फ स्टडी, राइटिंग। तो ये स्किल्स को बढ़ाने से हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स भी बढ़ती हैं, स्पीकिंग से, राइटिंग से, लिसनिंग से और रीडिंग से। दे आर ऑल टिप्स टू फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट। ये कुछ एनर्जी के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे हमारे हर सेशन में। द एनर्जी स्पीक्स बिफोर यू स्पीक। आप कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन आपके अंदर की क्या स्थिति है वो उसको लोग, आपके सबकॉन्शियस माइंड को दूसरा सबकॉन्शियस माइंड रीड कर लेता है। इसीलिए कहते हैं एटॉमिकली वी आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, बायोलॉजिकली वी आर कनेक्टेड टू द अर्थ एंड बायोलॉजी वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड केमिकली वी आर कनेक्टेड टू अर्थ एंड सबकॉन्सियसली वी आर कनेक्टेड टू ऑल द सबकॉन्सियस माइंड्स। साइकोलॉजी कहती है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति से तीन मिनट से ज्यादा मिल लेते हैं तो हम उससे हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाते हैं। आप उसको एनर्जी भेज सकते हो, उससे एनर्जी रिसीव कर सकते हो। तो ये एनर्जी के कुछ लेवल्स भी हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है सुप्रीम पावर्स। इसीलिए जब भी हम राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड लेवल है हमारे डाइटीज, देन सोल एनर्जी, हमारी खुद की सोल की एनर्जी, देन नेचर, डाइट, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। तो ये सब अलग अलग लेवल पे हमको एनर्जी देते हैं। उसके बाद है जो हमने अभी तक ट्रेनिंग्स की हैं, जाकर के रिक्वेस्ट में बैडमिंटन में किया, काफी जब ये छोटे से थे, साइना नेहवाल 2003, तब से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की, इनके जो फादर हैं डॉक्टर हरबीर नेहवाल उनके रिक्वेस्ट पे। फिर ये सन्नी थॉमस सर जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं शूटिंग में, उन्होंने बैंगलोर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बुलाया था, तो हमारी जयंती दीदी गए थे और मृत्युंजय भाई, तो बहुत अच्छे इनके सेशन हुए और कंटिन्यू इन्होंने बीच बीच में हमारे ये ट्रेनिंग्स रखाई थी। ये फिर क्रिकेट टीम के साथ भी हम लोगों ने 2011 में, उनको कहीं से पता चला कि यहाँ बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, तो फिर 10 दिन के लिए वर्ल्ड कप में सेवा करने का चांस मिला, तो उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे। तो हमारी सिस्टर्स भी इनको बीच बीच में ब्लेसिंग कार्ड देके, इनको तिलक लगा के इनको सेंटर पे बुलाएंगे कि बाबा कमरे में ले आते हैं, तो इन लोगों की बहुत अच्छी सेवा होती है। जैसे विराट कोहली तो बहुत इनके बारे में पॉजिटिव है और बीच बीच में टाइम निकाल करके वो कनेक्ट करते रहते हैं। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग का मैंने अपने स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे एक महीने में, ये अंकुर शर्मा है जो यमुनानगर से, he was not second in Asia but in the world championship he won the world championship like gold medal. तो इनको हमारी वहां की बहने सौगात दे रही है। तो ऐसे माउंट एवरेस्ट पे भी हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई, तो ये पर्वतारोही अंशु जैनसप्पा है जो तीन बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी, और एक बार तो 21 दिन में ही दोबारा माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। तो फैमिली मेंबर्स भी हैं, फैमिली बैकग्राउंड से हैं, तो ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला थी। फिर अलग अलग देशों में भी हम लोगों ने सेवाएं की हैं, ब्राजील ओलंपिक गेम्स में भी, अभी रिसेंटली एशियन चैंपियनशिप हुई थी उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर, तो पहली बार, हर बार चाइना फर्स्ट आता था, پہلی بار انڈیا واز آن دا ٹاپ آف دا لسٹ ان دا ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ. ٹیم چوپڑا اور کئی ایتھلیٹ ایسے تھے جنہوں نے اس کو انآفیشلی الگ الگ سیشنز کر کے, کیونکہ آفیشلی جاتے ہیں تو پھر وہ ایڈمنسٹریشن اس کے بیچ میں آ جاتا ہے, کئی بار وہ منع کر دیتے ہیں ٹریننگ کے لیے, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کی ٹریننگ نہیں, ہمارے پاس سائیکولوجسٹ ہیں, تو پھر جو ان کو فائدہ ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا. تو انہوں نے اپنے لیول پہ ٹریننگ کافی کرائی ہے. یہ راجیوگ کی پریکٹس کے کچھ اسٹیپس ہیں جو میں نے ابھی آپ کو کرائے تھے. تو یہ مارننگ کا جو میں نے ٹپس آپ کو بتائی ابھی, اس کے بعد ہم لوگ سوشل میڈیا میں بھی کنیکٹڈ ہیں, تو اگر آپ کبھی بھی مائنڈ پاور سے ریلیٹڈ کوئی ایک پیج ہے جگبیر سنگھ مائنڈ ٹرینر, تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں. ایک گروپ بھی بنایا ہوا ہے مائنڈ اینڈ برین ایکٹیویشن, تو اس کے دوارا بھی ہم آپ کی سیوا کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی ٹریننگ کرانی ہے اپنے سائڈ میں تو یہاں واٹس اپ نمبر بھی ہے, اس کے دوارا اپنا انٹروڈکشن دے کے اور ٹریننگ کے لیے بلا سکتے ہیں. ہماری ایک یا دو فیکلٹی یہاں سے آتی ہے ہیڈ آفس سے, باقی ایک یا دو ہمارے لوکل سینٹر سے ٹرینرز ہوتے ہیں. بہت اچھی ٹریننگ ہوتی ہے, ایک دو یا میکسیمم تین دن کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو لاسٹ میں میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ سوئم کو مشکلوں میں سے گزرنے دو, سوئم کو مشکلوں میں سے گزرنے دو, یہی آتما کی ایکسرسائز کا ایک ماتر طریقہ ہے. مشکلوں سے بچنا نہیں ہے, چیلنجز کو فیس کرنا ہے. کوئی آپ کی برائی کرتا ہے, کوئی آپ کے بارے میں الٹی سلٹی چرچائیں کرتا ہے, لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, جسٹ ڈونٹ بودر, کیپ گاڈ ود یور سیلف, پرماتما کو اپنا ساتھی بنا کے اور جیون میں آگے بڑھتے رہیں. پوری کائنات آپ کے ساتھ ہو جائے گی اور آپ ایک سفل انسان کے روپ میں دنیا کے سامنے ابھریں گے. تو آپ نے اتنا ٹائم دیا اور اتنے دھیان سے سنا, آپ کا سبھی کا بہت بہت تھینکس. آگے بھی ہم لوگ انٹریکشن کرتے رہیں گے. ایک دو کوشچن اگر آپ کے ہیں تو پوچھ سکتے ہو شارٹ میں, بیکاز مائی ٹائم از اوور. پلیز ان کا کہنا ہے کہ جو میری آتم چرچا ہوتی ہے سیلف ٹاک, وہ کنٹینیوسلی چلتی رہتی ہے, تو اس کو بریک کیسے کریں, بہت سارے تھاٹس آتے رہتے ہیں. یہ جو مائنڈ کو کنٹرول کرنے کی جو ودھی ہے, یہ ایکچوئل میں تو یہ جو سیون لیسنز پورے ہو جائیں گے, 2 تاریخ کو آپ کا لاسٹ لیسن ہے, تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سیون لیسنز کمپلیٹ ہوں گے. تو آپ کو لاسٹ میں بتایا جائے گا کہ آپ کو پریکٹس کرنی ہے سول کانشیس. جب بھی بہت سارے تھاٹس آ رہے ہیں مائنڈ میں, تو آپ تھوڑا سائلنس میں بیٹھیں کہیں بھی اکیلے ایکانت میں, گھر میں بھی ایکانت ہوتا ہے, نہیں تو چھت پہ جا کر کے بیٹھیں اور ایسا ویژلائز کریں کہ آئی ایم اے سول اینڈ ویری پاورفل سول, ڈیوائن سول, آئی ایم اے پیسفل سول. جیسے آپ یہ سنکلپ کرنا اسٹارٹ کریں گے تو آپ کے اتنے تھاٹس, ہزاروں تھاٹس جو آ رہے ہیں, تو وہ ایک دم فوکس ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے. ہم پورے دن میں لگ بھگ 60,000 تھاٹس کریٹ کرتے ہیں, تو یہ جو اتنے تھاٹس جو ہم کریٹ کرتے ہیں, اگر ہم اس کو چینلائز کر لیں, منیمائز کر لیں, تو ہماری انرجی لیول بڑھنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اوور تھنکنگ سے ہماری انرجی ڈرین ہوتی ہے. جیسے ہم پیسفل رہیں گے, اپنے افرمیشنز میں رہیں گے, سوئمان میں رہیں گے, تو ہماری انرجی سیو ہو جائے گی اور ہم اس کو کریٹو کاموں کے لیے لگا سکتے. تو یہ آپ پرسنلی بھی ملیں گے تو آئی کین گائیڈ یو. اور کوئی کوشچن؟ ہاں, نیوٹریشن اینڈ ڈائٹ کا ہم لوگوں کا ایک 45 منٹ کا سیشن ہے, جو 3 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس میں کیسے پروٹینز کو ہم مینٹین رکھیں. اور ایسا نہیں ہے کیول یہ من کے سنکلپوں کا کھیل, ہمارا بلیف سسٹم ہے کہ نہیں ہم نان ویج کھانے سے ہمیں زیادہ میڈل ملیں گے, جبکہ ایسا کچھ نہیں. اگر آپ ڈیوائن پاورز کو یوز کریں, راجیوگا میڈیٹیشن کا پریکٹس کریں, اور ساتوک بھوجن میں بھی اتنے پروڈکٹس ہیں, کیول ہمیں ان کی جانکاری ہونی چاہیے. تو तो उस जानकारी के लिए आप पर्सनली मिलेंगे तो आई कैन गाइड यू, वो काफी लंबा सेशन है। लेकिन वेजिटेरियन डाइट से ही सुशील कुमार पहलवान जब वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, अनिल कुंबले इतना अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, माइक मेंटर एक वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डर बन सकता है, मिल्खा सिंह जी एक इतना लेवल पे पहुंच सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट से हम अचीव नहीं कर सकते। लेकिन वो बिलीफ सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, उस बिलीफ सिस्टम को हम नॉलेज के द्वारा उनको नॉलेज देके, उनको एक दो महीने प्रैक्टिस करा के, एक महीने आप वेजिटेरियन प्रैक्टिस करो, एक महीने आप नॉन वेज से प्रैक्टिस करो, तो आपको खुद अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करो पेपर के ऊपर कि आपकी कैसी स्थिति है अभी, आप कितने खुश हैं, कितना आपको कॉन्फिडेंस है, तो आपको खुद पता चलेगा कि विच डाइट इज बेटर। बाकी उसके कुछ सब्स्टिट्यूट्स हैं, कुछ प्रॉपर सप्लीमेंट्स हैं, दैट आई कैन गाइड यू इंडिविजुअली। चलो जी जी
बावजूद भी वो उसको मौका ही नहीं मिलता। ये इसमें जो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ऊपर जो सिलेक्शन होता है या कुछ है उसमें कुछ ना कुछ कमियां या पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से उसको आगे आने नहीं मिलता
जी।
और मैक्सिमम ये होता है कि जिस फैमिली के बंदे हैं वहीं उसी में ही आते रहते हैं ज्यादातर, और किसी को चांस नहीं देते हैं ज्यादातर।
अब कहाँ से है, क्या नाम है?
मैं दिल्ली से हूँ, मैं सीनियर मोस्ट इंटरनेशनल अंपायर हूँ और बाकी कोरो में भी हूँ, काफी एक्टिविटी।
विच गेम?
क्रिकेट में भी रहा हूँ, टेबल टेनिस में भी रहा हूँ, चेस में भी रहा हूँ, हर एक में रहा हूँ, सब में फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है, मीडिया में भी हूँ।
प्लीज देखो ये जो सिस्टम की बातें हैं कि कहीं कोई सिलेक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है, कहीं कोचेज में पॉलिटिक्स है, कहीं प्लेयर्स में भी आपस में हो जाता है, तो इस ओवरऑल सिस्टम को डेवलप करने के लिए स्पोर्ट्स विंग और ब्रह्मा कुमारी हम लोग बहुत अच्छी तरह से लगे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स का अलग ट्रेनिंग कराते हैं, कोचेस का बहुत अलग कराते हैं, काफी इम्प्रूवमेंट्स आए उनके थिंकिंग प्रोसेस में, उनके वैल्यूज में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। तो आप लोग जुड़ेंगे और हम आगे जाकर के इसको एक्चुअली हम चाहते हैं कि ऑफिशियली हो, लीगली हो थ्रू गवर्नमेंट, तो अभी देखते हैं कौन सी गवर्नमेंट आती है, उनको दोबारा से अप्रोच करेंगे और ये ट्रेनिंग जितनी भी हमारी टीम्स हैं खासकर नेशनल लेवल पे जो वर्ल्ड लेवल पे जाती हैं तो उनके साथ कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे, डॉक्टर गुरदीप सिंह के साथ ये हमारी बातों को ऊपर गवर्नमेंट में ले जाएंगे और इनकी इनके द्वारा फिर हम वो वैल्यू सिस्टम लाएंगे ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ना आए। तो थैंक यू सर।
दिस इज रियली an enlightenment for us, the training of mind. One practical problem which we are facing today with Indian hockey, we are hiring international coaches from outside to train Indian team.
Yes.
When we are going to play against top teams like Pakistan, Germany, Holland, Australia, before the start of the match, I have been a player. We have a very high level of stress. खेलने से थोड़ी देर पहले तो it's very difficult to concentrate our minds on ball, opponent, strategy, skill. That is in scattered position. बिखर जाती हैं वो सारी चीजें। High degree of stress हमारे सामने है और जीतने की इच्छा दिल में है। उस वक्त क्या हम मेडिटेट करके इसको प्लेबल लेवल पे ला सकते हैं, मॉडल स्ट्रेस ला सकते हैं? इट हैज नॉट बीन टॉट टू अस व्हेन आई वाज अ प्लेयर, नाउ आई एम विद इंडियन हॉकी टीम विद बत्रा जी, और हमें नहीं पता लगता कि इस समस्या से कैसे।
आई विल आंसर यू, थैंक यू। देखो ऐसा होता है कि हमारी जो भारत की साइंस है ना, हमारे भारत के अंदर ही प्रैक्टिस नहीं की जाती है। बाकी मैं चाइना गया, कोरिया गया, उनके छोटे छोटे बच्चों को, 9-10 साल के बच्चों को मैंने मेडिटेशन करते हुए देखा। कोच बैठ के उनको बैठा देते थे, स्टार्टिंग में साइलेंस में बैठने से ही उनको प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाती थी। तो अगर आप 10 मिनट रोज करते हैं साइलेंस में प्रैक्टिस, तो आपको माइंड को स्टेबल करने के लिए एक साल में आपके कितने मिनट की आपके पास मेडिटेशन की शक्ति होगी? 300 दिन भी हम करते हैं और रोज 10 मिनट करते हैं तो कितने मिनट हो गए? 3000 मिनट की प्रैक्टिस आपके साथ है और एक व्यक्ति उसने कभी नहीं किया ऐसा, कभी सोचा भी नहीं कि मुझे सुबह सुबह साइलेंस में बैठना चाहिए। आप देखो किसी भी कैंप में ये सब ट्रेनिंग नहीं कराती साइलेंस वाले। तो जब हम ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा इतना कंट्रोल 30 दिन के अंदर, मतलब 3 से 4 वीक हमने देखा है कि हमारे थॉट्स जैसे आप चाहेंगे वैसे उसको फोकस कर सकते हैं। आप ग्राउंड के अंदर है तो ग्राउंड में रखेंगे, आप स्टडी कर रहे हैं तो फिर ग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। यू शुड फोकस ऑन द स्टडी। व्हेन यू आर मेकिंग स्ट्रेटजी तो स्ट्रेटजी बनाने में आपका माइंड, तो ये माइंड को कंट्रोल ड्रिल करने की प्रैक्टिस हमें सवेरे सवेरे उठने के बाद ये ड्रिल को हमें इम्प्लीमेंट करना हो। और इम्प्लीमेंट करने के बाद ये जो आप बता रहे हो, आई कैन अश्योर यू मेरे पास बहुत सारी वीडियो क्लिप्स हैं जो मैंने अभी नहीं दिखाई है क्योंकि कम से कम 1.5 घंटा लगता है, अभी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो मैं जो भी इस ट्रेनिंग के बारे में डीपली जानना चाहते हैं सो आई कैन गिव यू मेटेरियल, आई कैन गाइड यू प्रॉपरली, तो ये संभव है सर। और 2020 से पहले अगर नेशनल टीम के लिए ये इम्प्लीमेंट हो जाए, जो डिसाइडिंग ऑथोरिटीज हैं वो यहाँ विजिट करके उनको हम ये ट्रेनिंग दें और उसके बाद वो डिसाइड करें, तो 19-20 का फर्क मेडल में जरूर पड़ेगा जापान ओलंपिक में, लेकिन इसकी वेटेज करना बहुत जरूरी। नाउ थैंक यू, ओम शांति। अभी हम लोग
नौ और दस साल के बच्चों को ये करा रहे थे और हम देखते हैं कि चाइना इस वक्त स्पोर्ट्स में वर्ल्ड में नंबर 1-2 पोजीशन में आता है
जी।
और जैसे हमारे गुड्डी भाई भी कह रहे थे कि मतलब हम इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी हॉकी टीम का भी स्टेट ऑफ माइंड उस वक्त डिफरेंट होता है। और जो इतना हमारा ज्ञान है इसका बाकी वर्ल्ड पूरा फायदा उठा रहा है, तो मैं चाह रहा था कि ब्रह्मा कुमारी शायद कुछ ऐसा सोच विचार कर रही है गुड्डी भाई से मिलकर कि हम भी ये अपना ग्रास रूट लेवल पे यानी कि स्कूल लेवल से ये काम शुरू करें ताकि जब तक जब हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे जाएं जब तक वो इतने पक्के हो चुके हों कि हमारे रिजल्ट चाइना से भी बेटर आए। उम्मीद है कि ऐसा कुछ
अगर ऐसा इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो कोई डाउट नहीं है 2024 का जो ओलंपिक होगा, मालूम है कहाँ पे है? नहीं, 2024 का पेरिस में। वेरी नाइस, किसने बताया यहाँ पे छोटा? वेरी गुड। लोगों को पता नहीं है 2024 में कहाँ होने वाला, लेकिन हमारी प्लानिंग वहां तक चल रही है। हमारे बीच में कर्नल एएन झा साहब आए हैं यहाँ पे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट से, तो थोड़ा खड़े हो जाएंगे। तो आपको रियो ओलंपिक में गवर्नमेंट ने भेजा था, हम दोनों साथ गए थे, तो इनकी प्लानिंग 2024 के अभी से चल रही है। तो जो आपने बताया वो ग्रास रूट लेवल का काम ये कर रहे हैं, लेकिन मतलब हमको भी इन्वॉल्व करेंगे स्पोर्ट्स में ब्रह्मा कुमारी। सो थैंक यू, ओम शांति।
सभी एक बड़ी करतल ध्वनि से जगवीर भाई जी का थैंक्स करेंगे।